सहनावतु सहनौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
भगवान ने 14वें श्लोक में कहा, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है उसको हम माया से पार कर देते हैं, संसार सागर से पार कर देते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर शंकराचार्य जी लिखते हैं, अगर भगवान आप सबको मुक्ति दे सकते हैं, संसार के पार ले जा सकते हैं, तो फिर लोग आपके पास आते क्यों नहीं है, क्या कारण है? तो भगवान बताते हैं कि चार किस्म के दुष्कृत्य हैं, दुष्कर्म करने वाले। चार किस्म के दुष्कर्म करने वाले आप में से कोई बताएगा कौन है चार? आप किताब देख सकते हैं, 7 दिन तक तो आपने किताब खोली नहीं है, आप देख के ही बता दीजिए। आप चार किस्म के दुष्कृत्य हैं, एक तो मूढ़ा है, दूसरा नराधमा है, तीसरा माया अपृत ज्ञाना है और चौथा आसुरम है। ये चार किस्म के दुष्कृत्य लोग चूंकि वो दुष्कर्म में लगे हुए हैं, अब भगवान की प्राप्ति सत्कर्म से होती है, दुष्कर्म से तो होगी नहीं, तो इसलिए जो दुष्कर्म में लगे हुए हैं वो लोग जो है भगवान के पास नहीं पहुंच पाते, वो भगवान की शरण में नहीं आते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो अच्छे हैं। तो पुण्य कर्म करने वाले कौन कौन हैं? तो सुकृत न है, चार हैं, यहाँ भी चार बताते हैं, अर्थ है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है और ज्ञानी है। तो ये चार के अंदर भी इनको अगर हम देखें तो पहले वाले तीन जो हैं सकामी भक्त हैं, इनके अंदर कामना के अंदर सकाम चाहिए, उनकी सकाम कामना है या सकाम भक्ति कह सकते हैं। अर्थ को क्या चाहिए? उसको दुख है, वो चाहता है हमारा दुख हट जाए। अर्थार्थी को पैसे चाहिए, धन चाहिए। जिज्ञासु को भी चाहिए, क्या जिज्ञासु मांगता है? जिज्ञासु मांगता है कि मेरी मन की शुद्धि हो जाए या मेरे को कोई गुरु मिल जाए, ये जिज्ञासु चाहता है। तो ये सब हुए सकाम भक्त। और ज्ञानी, ज्ञानी कुछ नहीं चाहता है इसलिए वो निष्काम भक्त हुआ। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है, उसमें ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त है। इन चारों में से चार जो भक्त हैं सुकृत भक्त हैं, एक अर्थ है, एक अर्थार्थी है और एक जिज्ञासु है और चौथा जो ज्ञानी है, इसमें ज्ञानी जो है वो बोलते हैं नित्य युक्त है, बराबर मेरे शरण में है, बराबर मेरा याद करता है। बाकी तीन नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? देखो, अर्थ ने प्रार्थना की, उसके आर्ता का उसका दुख खत्म हो गया, वो भूल जाता है, फिर नहीं जाता भगवान के पास। अर्थार्थी, उसको धन चाहिए था, धन मिल गया, फिर वो नहीं जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप नित्य युक्त कह सकते हो? नहीं, वो नित्य युक्त नहीं है, वो यदा कदा युक्त है। जब उसको दरकार होती है, जब उसको कुछ चाहिए होता है, तब वो युक्त होता है, और जब काम खत्म हो गया फिर भगवान को भूल जाता है। जिज्ञासु, जिज्ञासु भी नित्य युक्त नहीं है, पिछली क्लास में हमने बताया था। कोई बताएंगे क्यों नित्य युक्त नहीं है, क्या कारण है? उसका कारण ये है कि उसके अंदर अभी भी वासना का रस रह गया है। उसकी इच्छा है कि हम इस सतमार्ग पर चलें, मगर वासना कभी कभी विक्षेप कर देती है। विक्षेप कर देती है मतलब कभी कभी वो संसार की तरफ चलना शुरू कर देता है। इसलिए जिज्ञासु भी नित्य युक्त नहीं हुआ। आप इसको बहुत अच्छी तरह से सुना करें, मनन करें, ताकि आगे चल के आपको याद रहे। और मैं तो चाहूँगा कि आप लोग सब आगे चल के इसका प्रचार करें, पढ़ाएं। अब जब आपको लोग ऐसे प्रश्न करेंगे कि कैसे आप कहते हो ज्ञानी नित्य युक्त है, बाकी तीन नित्य युक्त नहीं है। नित्य युक्त का मतलब क्या? 24 घंटे याद करता है ज्ञानी, बाकी नित्य युक्त नहीं है। एक भक्ति विशिष्टते, एक भक्ति विशिष्ट मतलब एक को पकड़ के रखा हुआ है, बस एक परमात्मा को पकड़ के। प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम, वो ज्ञानी मुझसे बहुत प्रेम करता है, अत्यर्थम बहुत प्रेम करता है। और अहम सच मम प्रिय, अब मैं भी उसको प्यार करता हूं। मगर भगवान देखो अत्यंत नहीं बोलते हैं यहां पर। आप जो है थोड़ा सा चिंतन करो, भगवान कहते हैं भक्त मेरे को बहुत प्यार करता है। तो अगर भक्त बहुत प्यार करता है तो भगवान को करना चाहिए ना। भगवान फिर जो है चुपके से कहते हैं नहीं, मैं उतना नहीं कर पाता हूँ जितना वो भक्त करता है, उतना नहीं कर पाता हूँ। फिर भगवान कहते हैं उदारा, ये सब श्रेष्ठ हैं, ये चारों भक्त मेरे जो हैं आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सब के सब उदारा सर्वे वेति, ये सब श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, मगर ज्ञानी इसमें मेरी आत्मा है, ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी मेरी आत्मा मतलब उसको ज्ञान हो गया है कि मैं ब्रह्म हूँ, वो मेरे साथ एक हो गया है, बाकी जो बाकी एक नहीं हुए। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु एक नहीं हुए अभी, ज्ञानी एक हो गया है। आस्तित सही युक्त आत्मा मेव मामेव अनुत्तमाम गति, अब वो आस्तित है, वो उसके अंदर स्थित है, भगवान में परमात्मा में स्थित है, क्योंकि उसने ठीक कर लिया है कि अंतिम उसकी परम गति जो है वो भगवान ही है, वही उनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर कहते हैं भगवान इस ज्ञान की स्तुति करते हैं। ये ज्ञान कैसा है? बहुनाम जन्मानांते ज्ञानवान प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद में ज्ञानवान जो है शरण में आता है। बहुत जन्मों के बाद में क्यों? बहुत जन्मों का मतलब वासना को क्षय करने में बहुत जन्म लग जाते हैं। कई बार आप लोगों से हमने कहा है कि हमारे यहाँ केवल 2 स्टेप हैं, मेनली 2 स्टेप हैं। हालांकि साधना पंचकम में 40 स्टेप बताए गए, भज गोविंदम में 9 वर्स नंबर 9 के अंदर 4 स्टेप में बता दिया। सही पूछो तो 2 स्टेप है, एक तो मन की शुद्धि है और दूसरा जो है ज्ञान की प्राप्ति है। तो मन की शुद्धि को भगवान कहते हैं बहुत जन्म निकल जाते हैं, तब ज्ञान के लिए आदमी फिट होता है। तो आप मत सोचिएगा कि हमारा तो हमने तो पहली बार ज्ञान सुन रहे हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग का मन थोड़ा शुद्ध हुआ है तभी आप बैठ पाते हैं, नहीं तो कोई बैठ नहीं पाता है। तो आप अपने को हीन मत समझिएगा कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्या होगा इस जन्म में पता नहीं। आपने आगे बहुत सत्कर्म किए हुए हैं तभी आप सत्संग में बैठ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है, बहुत पुण्य की पूंजी होने पर तब सत्संग मिलता है। तो इसको क्या मिलता है? ज्ञानवान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ है, वो सब कुछ कहता है ये सब कुछ वासुदेव है। जैसे हम लोग वेदांत में क्या कहते हैं? ये सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। भक्त क्या कहता है? बोले सब कृष्ण है, सब भगवान है, ये भी वासुदेव है, वो भी वासुदेव है, सब वासुदेव है। ये भक्त की दृष्टि है। अब उसको सब जगह वासुदेव ही नजर आते हैं, और ज्ञानी को वेदांतिन को वो सब जगह ब्रह्म देखता है, उसको आधार में ब्रह्म मिलता है। तो ये सब जगत जो है आत्मस्वरूप वासुदेव ही है। इस प्रकार न समझ में आने का कारण क्या है? जो नहीं सबको वासुदेव नजर आते हैं सब जगह, जैसे वेदांतिन को हर जगह ब्रह्म नजर आता है, भक्त को सब जगह वासुदेव नजर आता है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं सबको ऐसा नजर आता, सबको नजर आना चाहिए, अगर वासुदेव सब जगह हैं तो सबको नजर आना चाहिए। यहाँ पर फिर कहते हैं काम ही तेहते ही हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, इन लोगों की कामा है, कामनाएं हैं, बहुत किस्म की कामनाएं हैं, और इनका ज्ञान जो है उससे अपहृत हो गया इन कामनाओं के कारण में। ये कामना क्या है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, मोहनम स्तंभनम आकर्षणम वशीकरण मरणम उच्चाटनम, इन सब कामनाओं के कारण ये क्या करते हैं, फिर एक ऐसे देवता के पास में जाते हैं, काला जादू जहाँ होता है, या कोई ऐसा टेरिबल देवता है जिसको पशु बलि देंगे या और कुछ करेंगे, फिर शमशान में जाके फिर कुछ ऐसा करते हैं, भूत पिशाच का करते हैं, इसका ये हो जाए उसका वो हो जाए, ऐसा ऐसा वो लोग करते हैं। तो इन सब ज्ञान के कारण में वो क्या कहते हैं, प्रपद्यते अन्य देवता, अन्य देवताओं के पास चले जाते हैं, भगवान परमात्मा के पास में, भगवान कृष्ण के पास में नहीं आते हैं, कहाँ जाते हैं, अन्य देवताओं के पास में जाते हैं। क्यों, इसको मोहन करना है, इसको मोहित करना है, इसको वशीकरण करना है, इसको मारना है, इसको घर से हटाना है। एक कई किस्म के समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो फिर ऐसी ऐसी पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे देवताओं के पास में जाते हैं। तम तम नियम आस्थाया प्रकृतया नियता स्वा, वो क्यों करते हैं, ये उनका स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है, प्रकृति है, नियता स्वया, अपनी प्रकृति के कारण, अपनी वासना के कारण करते हैं। हर व्यक्ति की वासना अलग अलग है, तो उस व्यक्ति की वासना क्या है, तो उसको ऐसा वशीकरण करना है कि किसी को मोहित करना है, किसी को उच्चाटन करना है, किसी को स्तंभन करना है, किसी को वशीकरण करना है, ये सब उसकी वासना है। सबकी वासना ऐसी नहीं होती है, तो अपनी वासना के कारण वो ऐसा करते हैं, तो वो नियमों का पालन करते हैं, और नियम का पालन करके उसके बाद में वो अपना जो है काम सिद्ध कर लेते हैं। अब इसके बाद में भगवान कहते हैं उन कामी पुरुषों के लिए भगवान क्या करते हैं, जो ऐसे कामी लोग हैं, कौन से, जो दूसरों को मोहित करना चाहते हैं, स्तंभन करना चाहते हैं, उच्चाटन करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, वशीकरण करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान क्या करते हैं। 21वां श्लोक,
यो यो याम याम तनुम भक्तः,
यो 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 याम याम तनुम भक्तः,
श्रद्धयार्चितुमिच्छति,
श्रद्धयार्चितुमिच्छति,
तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम,
तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम,
तामेव विदधाम्यहम्,
तामेव विदधाम्यहम्।
यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।
यह 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 मतलब वो कामी आदमी, कौन सा कामी आदमी, जो पिछले श्लोक में हमने देखा, जो उच्चाटन वशीकरण मोहित करना चाहते आदि आदि आदि, ऐसे कामी लोग याम याम तनु, याम याम तनु मन जिस जिस देवता को, जिस जिस देवता को भक्त, ये भी भक्त है, ये पूजा कर रहा है छोटे देवता की, श्रद्धा उसकी, श्रद्धा भी है उसके अंदर कि ये देवता मेरा ये काम कर देंगे, ये श्रद्धा भी है उसमें, अर्चितुम इच्छति, और ये इच्छा से वो उनकी पूजा करता है। भगवान कहते हैं तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, मैं क्या करता हूँ, उसकी श्रद्धा को अचला कर देता हूँ, दृढ़ कर देता हूँ, तुम यहीं पर जाओगे, तुम इन्हीं देवताओं के पास में जाओगे, अचलाम ताम ए विधामि हम, और मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। भगवान जो है कहते हैं मैं कर देता हूँ, आपकी श्रद्धा उस देवता के अंदर है, चलो आप उसी देवता की पूजा करो। तो तनुम कैसे हो सकता है, बोले उनकी शरूर शरीर मूर्ति अन्य देवता सबके अपने अपने अलग अलग रूप हैं, उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं, मगर आपको याद रखना होगा कि इन सब शरीरों के अंदर चेतना मगर एक है, ये याद रखना होगा बराबर। जो भी अन्य देवता हैं उसके भीतर जो चेतना है वो चेतना एक है। ऐसे मान लीजिए इंद्र हैं, वरुण हैं, इनके रूप अलग अलग हैं, ये फल भी आपको देंगे, फल भी देंगे, मगर इन सब के अंदर, इंद्र के अंदर, वरुण के अंदर या अन्य देवताओं के अंदर जो चेतना है वो चेतना एक ही है। और जो फल मिलता है वो सर्वज्ञ जो परमात्मा है उन्होंने निश्चित किया है, उन्होंने ठीक किया है कि लक्ष्मी जी क्या देंगी, कि सरस्वती जी क्या देंगी, इन सब का कौन नियंता है, वो परमात्मा है, परमात्मा ने उन्हें ठीक कर दिया है आप ये फल देंगे। अब अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी वो परमेश्वर को नहीं जानता है, उस परमात्मा को नहीं जानता है, वो छोटे छोटे देवताओं की जाके पूजा करता है और उसका काम भी हो जाता है, और वो समझता है ये छोटे देवता जो हैं बहुत शक्तिमान हैं, बहुत शक्तिमान हैं। देखो महात्मा लोग समझाने के लिए कहो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जो है एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक ग्राम के अंदर, आगे तो ग्राम में पानी नहीं हुआ करता था, अब एक एक ग्राम में कहीं पर एक नलका आ गया, एक जो है टैप आ गया, एक नलका आ गया। अब जो है ग्राम वाले क्या सोचते हैं, उनके लिए आश्चर्य है, आगे उनको जो है हाड़ी में कलसी में कहीं से पानी लाना पड़ता था, अब वो सोचते हैं कि ये तो देवता है, ये तो घर में आ गया, कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो वो कहते हैं ये नल देवता है, नल देवता है। मगर इस नल देवता का कनेक्शन कहाँ है, उसका कनेक्शन कहीं रिजर्वायर में है ना, उस रिजर्वायर से ही तो पानी आता है, तो नल देवता क्षुद्र देवता हुआ और जो रिजर्वायर है वो परमात्मा हुआ। वो ग्राम के लोग जो हैं उसको नल देवता की पूजा करेंगे, वो परमात्मा की पूजा नहीं करते हैं, जहां से आ रहा है। देखो ये जो है समझने की छोटी छोटी बात है, अगर हम पता हमको लग जाए कि भाई परमात्मा से ही सब आ रहा है तो सब परमात्मा में लाइन लगाएंगे, वो भी वो चीज दे सकते हैं, मगर नहीं, वो छोटी छोटी जगह पर वो लोग जाएंगे। तो जब वह श्रद्धा से पूजा करते हैं तो वह अंतर्यामी क्या करते हैं, अंतर्यामी भीतर बैठे हुए हैं, उसकी श्रद्धा बोलते नहीं तुम ठीक कर रहे हो, करते रहो ऐसे ही करो। देखो भगवान को ये पता है अगर ये छुट्टी देवताओं के पास भी जा रहा है तो मेरे पास ही आ रहा है, मैंने ही तो इनको फल दिया है। अगर आप परमात्मा की पूजा करोगे तो फल परमात्मा से आएगा, परमात्मा की पूजा न करके अगर छोटे देवताओं की पूजा करोगे तो वो भी फल परमात्मा से इनडायरेक्टली आ रहा है, ये आपको समझ लेना होगा। अल्टीमेटली फलदाता जो है परमात्मा ही है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो फिर मैं बता दूं कि छोटे छोटे देवताओं का पावर भी भगवान ने दिया हुआ है। आप लोगों ने केनु उपनिषद यहाँ हमने पढ़ाया था, पढ़ा होगा, उसमें एक समय देवता और असुरों का युद्ध हुआ और देवता जीत गए, तो वो पार्टी कर रहे थे, तो पार्टी कर रहे थे, वहाँ पर जो है ब्राह्मण एक यक्ष रूप में आ गया, तो ये सब देवता तिलमिला गए, ये कौन आ गया, इसको तो इन्वाइट नहीं किया था, ये यक्ष कौन है, जाओ इसका पता करके आओ। तो पहले जो अग्नि देवता को भेजे, तो यक्ष ने कहा भाई तुम कौन हो, बोला मैं अग्नि देवता हूँ, क्या कर सकते हो, बोले सारी दुनिया को जला सकता हूँ। तो उस यक्ष ने कहा कि चलो ये घास का एक सूखा टुकड़ा है, इसको तुम जला दो। अब ब्राह्मण ने शक्ति छीन ली थी, अब उसने पूरी ताकत लगाई, वो घास के तिनकों को जला ही नहीं पाया, कहाँ गई ताकत उसकी, किसने उसकी ताकत छीन ली उस टाइम में, यक्ष ने छीन ली। वो जाके वहाँ पर अपनी फिर पार्टी में गया, इंद्र से पूछा क्या हुआ, पता ही नहीं लगा वो कौन है यक्ष, मैं कर ही नहीं पाया, मेरा पावर जो है सब खत्म हो गया, मेरी शक्ति खत्म हो गई। फिर उन्होंने वायु देवता को भेजा, वायु देवता उससे सूक्ष्म है, सीनियर हैं, मालूम है ना, सबसे सूक्ष्म शब्द है, उसके बाद शब्द के बाद स्पर्श वायु, उसके बाद रूप, तो रूप जो है फायर का, अग्नि का है, तो उससे सीनियर जो है हुए वायु देवता, उनको भेज दिया यक्ष के पास में। यक्ष ने पूछा भाई तुम कौन हो, बोले मैं वायु देवता हूँ, क्या तुम्हारी शक्ति है, बोले सारी दुनिया को उड़ा सकता हूँ, बोलो किसको उड़ाना है, उड़ा देता हूँ, बोले तिनको को उड़ा दो, वो भी नहीं उड़ा पाया। देखो ब्राह्मण ने शक्ति छीन ली, इससे पता लगता है कि शक्ति कहाँ से आती है, जो शक्ति देने वाला है वो शक्ति छीन भी सकता है। अच्छा, अब भगवान कहते हैं मैं उनकी भक्ति को बढ़ा देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ ऐसे लोगों की। अच्छा तुमको यहाँ जाना है, यहीं जाते रहो। जैसे हम लोग की देखो भक्ति स्थिर है कि नहीं, कोई गणेश की पूजा करता है, हैं, कोई शक्ति की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई छोटे गोपाल की पूजा करता है, सब उसमें स्थिर कर दिए, आपको उसी में आनंद आता है, उसी में आनंद आता है। तो भगवान अंतर्यामी रूप में बैठ के हमारी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं, हाँ चलो ठीक है यही करते रहो। फिर जो है यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर 17 में देखा, आपने तो नहीं देखा, यहाँ हम पढ़ा चुके हैं सत्व रजस तमस तीन किस्म की श्रद्धा भी होती है। जिसकी श्रद्धा सात्विक है वो देवताओं की पूजा करता है, जिसकी राजसिक श्रद्धा है वो यक्ष राक्षस की पूजा करता है, जिसकी तामसिक श्रद्धा है वो भूत प्रेत की पूजा करता है। श्रद्धा भी सात्विक राजसिक और तामसिक होती है। अच्छा फिर भगवान कहते हैं 22वें श्लोक में,
सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्।
सतया श्रद्धया युक्त, स मतलब वो भक्त जिसकी श्रद्धा मैंने स्थिर कर दी, जो छोटे छोटे देवताओं के पास में जाता है, अंतर्यामी रूप से मैं भीतर बैठ के उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ कि हाँ ठीक है तुम इसी देवताओं के पास में जाया करो। सतया श्रद्धा युक्त तस् आराधनम इहते, और वो ऐसी आराधना करता है, लभते च तत्कामान मया एव भीतान तान, और उसकी अपनी कामना उसकी पूर्ण हो जाती है, जो जो कामना के हिसाब से वहाँ गया है वो कामना उसकी पूर्ण हो जाती है। और वो किसने ठीक किया, विहितान हितान, मैंने विहित कर दिया, वो पावर मैंने दिया उनको कि तुमको ये करना है, सारी पेटिशन मेरे पास ना आए, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा काम करो, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी काम करो। तो सा कामान भक्त तथा श्रद्धा युक्त, भक्त की श्रद्धा पहले भी थी मगर भगवान ने उसको और मजबूत कर दिया और स्थिर कर दिया। तस्य आराधनम इहते, भक्त नियम के अनुसार उनकी पूजा करता है, जैसा जैसा पूजा की विधि शास्त्र में लिखी है उस हिसाब से वो करता है। फिर क्या होता है, लभते च ततः कामान मया एव भीतं तान, और पूजा की विधि पूर्वक अगर की गई है तो उसको फल अवश्य मिलेगा। मैं सर्वेश्वर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं दे सकता हूं, वो मेरे पास तो नहीं आया, वो तो छोटे देवता के पास गया, तो फल उसको छोटे देवता से ही लेना होगा, ऐसा मैंने नियम बनाया है, और मेरे नियम के अनुसार ही ये छोटे छोटे देवता जो हैं काम करते हैं, मैंने नियम बनाया हुआ है। और मैं ये भी देखता हूँ कि जिस भक्त ने उन छोटे छोटे देवताओं की पूजा की है उनको फल जरूर प्राप्त हो, ये मैं देखता हूँ। विधि पूर्वक आपने अगर पूजन किया है तो फल आपको जरूर मिलेगा। इस तरह भक्त की श्रद्धा इन छोटे छोटे देवताओं में बढ़ती है, और भक्त अपनी पसंद के अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जो परमेश्वर की जो परमात्मा की पूजा करता है उसे परमात्मा फल देते हैं, और जो छोटे छोटे देवताओं की पूजा करता है उसको भी परमात्मा ही फल देते हैं, मगर छोटे छोटे देवताओं के थ्रू देते हैं। क्योंकि विधान नियम किसने बनाया, नियम तो परमात्मा ने बनाया है कि ये देवता ये फल देगा इस पूजा का, मगर छोटे छोटे देवता क्या नहीं कर सकते हैं, एक तो वो अपनी कुर्सी नहीं दे सकते, अपनी कुर्सी नहीं दे सकते और मुक्ति नहीं दे सकते, दो चीज वो नहीं दे सकते। छोटे छोटे देवता अपनी कुर्सी नहीं दे सकते और मुक्ति नहीं दे सकते, दो चीजें वो नहीं देंगे आपको, मगर परमात्मा, परमात्मा आपको मुक्ति देगा, पराभक्ति भी दे देगा, और अगर दरकार पड़ेगी तो आपके घर में आके नौकर बन के भी आपकी सेवा करेगा, देखो परमात्मा इतना काम कर देते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर संतों के पास आके भगवान ने काम किया, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। अच्छा, तो भगवान इनके फल में कुछ फर्क है क्या? ये छोटे छोटे देवता जो फल देते हैं और आपके फल में, वही तो हमको पता ही लग गया कि भगवान जो फल दे सकते हैं वो छोटे छोटे देवता नहीं दे सकते। परमात्मा मुक्ति दे सकता है मगर छोटे देवता मुक्ति नहीं दे सकते हमें। तो भगवान कहते हैं 23वें श्लोक में,
अंतवत्तु फलम तेषाम,
अंतवत्तु फलम तेषाम,
तद्भवत्यल्पमेधसाम,
तद्भवत्यल्पमेधसाम,
देवान् देवयजो यान्ति,
देवान् देवयजो यान्ति,
मद्भक्ता यान्ति मामपि,
मद्भक्ता यान्ति मामपि,
अन्तवत्तु फलं तेषां, तद्भवत्यल्पमेधसां, देवान् देवयजो यान्ति, मद्भक्त्या यान्ति मामपि।
शंकराचार्य जी लिखते हैं क्योंकि वे कामी, कौन से कामी की बात कर रहे हैं? वो उच्चारण याद रखिएगा, ये श्लोक का कनेक्शन अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। उन कामी की बात हो रही है जो मोहित करना चाहते हैं, जो स्तंभन करना चाहते हैं, जो उच्चारण करना चाहते हैं, जो वशीकरण करना चाहते हैं, उन कामी लोगों में। और अविवेकी पुरुष विनाशशील साधन की चेष्टा करने वाले होते हैं, इसलिए अंतवंत तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। ऐसे लोगों को क्या कहा भगवान ने? इनकी बुद्धि अल्प है, छोटी है, क्षुद्र है, इनकी बुद्धि विकसित नहीं है, अल्पमेधसाम। अंतवंत तु फलम तेषाम, उनका फल कैसा होगा? अंतवंत, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, अंतवंत नहीं। देवान देव यजयान्ति, और जो इन क्षुद्र देवताओं की पूजा करते हैं तो वो कहाँ पहुंचेंगे? बहुत से ज्यादा उन छोटे देवताओं के लोक तक पहुंच जाएंगे बस। और मदभक्ता यान्ति मामपि, और मेरे भक्त मेरे को पा जाते हैं। मेरे को पा जाने का मतलब क्या हुआ? मुक्ति मिल गई। अन्य देवताओं के पास जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो क्षुद्र देवताओं की जो पूजा करते हैं उन लोगों को भगवान कहते हैं अल्पमेधसाम। उम्मीद करते हैं आप अगली बार जब मंदिर जाओगे तो निश्चित अल्पमेधसाम नहीं बनोगे। अच्छा, उनका मन जो है छोटी छोटी कामना से घिर गया है। अल्पेशु परिच्छिन्नेशु क्षुद्र देवेशु, उनका मन छोटा एवं छोटे देवताओं में चला गया है। और उनका फल क्या है? अंतवंत है। तत्फलम अंतवंत, फल जो कि मेरे द्वारा क्षुद्र देवता को अधिकृत किया था वो अंतवंत है। इन देवताओं को जो भी कुछ आपको देंगे वो परिच्छिन्न है, वो लिमिटेड है, और जो कुछ भी परिच्छिन्न है वो विकारी है, विनाशशील है। वेदांत की दृष्टि से देखिए, आप जो कुछ भी मांगने जाते हो, आज तक जो कुछ भी आपने भगवान से मांगा है, आज तक सोच के देखो, आपने अनात्मा ही मांगा है। अब मैं हम आपको गिनाऊंगा नहीं आप क्या क्या जाके मांगते हो। हम एक वर्ड के अंदर हम सारे को लपेट देते हैं। आपने आज तक, आप सोच के देखिए, आपने भगवान से केवल अनात्मा ही अनात्मा मांगा है। और अनात्मा को मांगने वाला अनात्मी सब चीज़ें कैसी है? वो तो स्थाई तो है नहीं। अब तो इतना वेदांत पढ़ने के बाद में आपको तो अब सोते सोते भी बोलना होगा कि अनात्म वस्तु स्थाई नहीं होती, वो नाशवान है, नाशवान है। अच्छा, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त से बेहतर वो भक्त है जो मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। अगर वो परमात्मा की पूजा करता, जैसे कि आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी करते हैं, वो किसकी पूजा कर रहे हैं? परमेश्वर परमात्मा की। हम किस कामी की बात कर रहे हैं? उच्चाटन, मोहित करने वाला, वशीकरण, मरण, इसकी उस कामी की बात कर रहे हैं। दोनों ही पूजा कर रहे हैं, दोनों पूजा कर रहे हैं, मगर जो आर्थ है अभी वो साकामी है, मगर अल्टीमेटली आस्ते आस्ते वो जो है मोक्ष का अधिकारी बनेगा, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। छोटे देवताओं और बड़े देव परमात्मा में फर्क क्या है? छोटे देवता को कोई अधिकार नहीं है फल कमती करने का, बेसी करने का, कि आपको जो है 10 दिन बाद देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। वो नियम पूरा पालन किया गया है, फल आपको पूरा देना है, खत्म। मगर परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा देखते हैं मेरा भक्त भटक नहीं जाए, ये चीज मांग रहा है, इसे अभी देना ये ठीक नहीं है। वो नारद की कहानी आपको याद होगी। नारद जी बोले थे, विष्णु बोला मेरे को आप सुंदर बना दो, मेरे को जाके शादी करनी है। और भगवान ने कहा कि ये मेरा भक्त है, कहाँ भटक जाएगा। उसको बंदर का रूप दे दिया, देखो नहीं दिया उसको। आप बताओ, नारद जैसे भक्त को नहीं दिया, ये भटक जाएगा, इसको भक्त को हमको देखना है। तो कई बार ऐसा होता है, मांगते थोड़ा सा है, मगर भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम इसके लायक नहीं, तुमको बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है, आपने सोचा भी नहीं होगा जितना आपको भगवान दे देते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि नहीं, अभी ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, नहीं देंगे आपको, नहीं भी मानते हैं। तो भगवान जो है, परमात्मा जो है, अपने भक्त का हित देखते हैं, उसका हित देख के उसके हिसाब से उसको फल देते हैं। और परमात्मा की क्षुद्र देवता क्या हैं? छोटे छोटे देवता, परिच्छिन्न शक्ति है, परिच्छिन्न भोग है, परिच्छिन्न काल है, ये लिमिटेड हैं। और परमात्मा अपरिच्छिन्न है, अनंत है, पूर्ण है, परमानंद है, शुद्ध भक्ति मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जो आर्थ हैं, जो अर्थार्थी हैं या जिज्ञासु हैं, वो इन कामी भक्तों से बेहतर हैं। देखो क्यों बेहतर हैं? क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है फ्यूचर में, भविष्य में। मगर ये दूसरे छोटे देवताओं के पूजा करने वालों को नहीं होगी। देखो, आपको उदाहरण देंगे तो आपको और समझ में आएगा। अच्छा, छोटे देवता और परमात्मा, मान लो बहुत गर्मी है, आपके घर के अंदर स्विमिंग पूल भी है, और आपका घर मान लो गंगा जी के किनारे भी है, तो गर्मी में अब आपके पास में दो चॉइस है ना। एक तो आपके छोटा देवता है, आपके घर के अंदर स्विमिंग पूल है, वो भी आपको गर्मी से शांति देगा। और मगर उसका परमात्मा बाहर गंगा में बैठा हुआ जो है, आप गंगा जल में स्नान करोगे तो वो भी आपका दुख जो गर्मी को जो है वो ताप को हटाएगा, मगर एट द सेम टाइम आपको पाप को भी धो देगा। देखो, अब आपको समझ में आ रहा है, गंगा में स्नान करना और अपने स्विमिंग पूल में स्नान करना, क्षुद्र देवता और परमात्मा। इसी तरीके से जैसे एक और आपको एग्जांपल देते हैं, एक धनी व्यक्ति के यहाँ शादी हो रही है, उसकी लड़की की शादी है। अब शादी के अंदर आगे तो होता था ना, बहुत सी आगे मिठाइयाँ बना बना के एक स्टोर रूम में बंद करके रख देते थे, इतना तो फ्रिज वगैरह आगे नहीं हुआ करता था, तो ऐसी सूखी चीज़ सब बनाते थे, नमकीन बनाएंगे तो भुजिया बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे जो चलेगा काफ़ी दिन तक, सूखा सूखा, नॉट दैट रस वाला, सूखा सूखा बहुत दिन तक चलता है रखा। अब उसको ताला बंद करके रखते थे कि जो सब कोई आके चोरी करके ना ले लें। तो एक आदमी है, वो उसका देवता है जिसके पास चाबी है। अब बच्चे आते हैं, मेरे को लड्डू दो, मेरे को लड्डू दो, वो खोल के एक लड्डू निकाल के दे देता है। जहां एक को दिया फिर सारे बच्चे लाइन लगा लेते हैं, फिर वो सबको देता है। तो एक बच्चे ने सोचा कि हर बार लड्डू खाना होता है तो इसके पास आना पड़ता है, दो मेरे को दो, और उसको कहता है तुम इस घर की चाबी मेरे को दे दो, और उसने दे दिया। देखो परमात्मा को मांगा, परमात्मा मिल गया। अब हर बार उसको जाना नहीं पड़ेगा लड्डू लेने के लिए उस छोटे देवता के पास में, एक एक लड्डू दो, एक लड्डू दो, उसका पावर ही ले लिया, तो मेरे को ही दे दो, उसने दे भी दिया। उसी तरह भगवान के पास में अगर जाओ आप तो मांगते हो छोटी छोटी चीज, आप भगवान को बोलो मेरे साथ चलो, देखो भगवान आपके साथ आते हैं कि नहीं आते, भगवान आ जाएंगे, चलो भाई मेरा भक्त लेके जा रहा है और क्या चाहिए, चलो। अब आपको जो है ये सोचना है कि दोनों का प्रयास पूजा का एक है, ऐसा नहीं है कि परमात्मा की पूजा के लिए आपको आयास बहुत ज्यादा करना है। पत्रम पुष्पम तोयम फलम, भगवान ने कहा बस मेरे को तो यही चाहिए, मैं उसी में खुश हूं। और भगवान जो है क्रोधित करते, क्रोध उनको आ रहा है कि फिर क्यों क्षुद्र देवता के पास में लोग जाते हैं, छोटे छोटे देवताओं के पास में जाते हैं। एवं समाने अपि आयासे माम एव न प्रपद्यन्ते, आपको उतना ही करना है कष्ट, ज्यादा तो नहीं करना है, फिर क्यों नहीं मेरे पास आते हो। अनंत फलाय हो खलु कष्टम वर्तन्ते, मैं आपको अनंत फल दे सकता हूं, मेरे को दुख हो रहा है, क्यों वहां जा रहे हो तुम। हम लोग को यहां बैठे बैठे दुख होता है कि क्यों नहीं लोग आते हैं, ये ज्ञान ले ले खुश हों सब लोग, वो नहीं आते हैं, क्या करें। तो परम प्रेम भगवान की प्राप्ति का साधन है, लोग अपने जीवन का नियंत्रण भगवान परमेश्वर को नहीं देना चाहते हैं। परमात्मा के पास में हम जाएंगे तो परमात्मा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हमें फल देंगे, ये हम करने नहीं देना चाहते उसको। हम छोटे देवता के पास जाएंगे, हम निश्चित हो जाएंगे कि ये पूजा करेंगे हमको ये फल मिलेगा, हम इनके पास जाएंगे, हम परमात्मा के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे भाई, पता नहीं परमात्मा देंगे कि नहीं देंगे, मेरे तो ये चाहिए अभी, अभी किसको मारना है। परमात्मा हुआ, परमात्मा सोचेंगे अरे ये भी तो मेरा ही रूप है, कैसे तुमको मैं मारने दूं, तुम एक ब्राह्मण को मारने जा रहे हो कि गो हत्या करने जा रहे हो, मैं कैसे करने दूं तुमको, परमात्मा नहीं करने देंगे। इसलिए लोग जाते नहीं हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं। अब वो भगवान कहते हैं अच्छा ये लोग हमारी शरण में क्यों नहीं आते हैं। ऐसे लोग जो हैं जो क्षुद्र देवताओं, छोटे छोटे देवताओं के पास में जाते हैं, मेरे पास क्यों नहीं आते हैं। तो भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में,
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः,
मन्यन्ते माम बुद्धयः
परम भावम जानन्तः,
परम भावम जानन्तः
ममाव्ययमनुत्तमम्,
ममाव्ययमनुत्तमम्
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावम जानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्।
अव्यक्तम, अव्यक्तम भगवान कहते मैं कौन हूं, मैं अव्यक्त हूं, अव्यक्त हूं। व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्ध है, मगर लोग क्या करते हैं, अविवेकी लोग अबुद्ध है, वो सोचते हैं व्यक्तिम आपन्न ये तो एक व्यक्ति है, साधारण मनुष्य का, इसने एक तनु एक शरीर धारण किया है, हमारे जैसा है ये तो, इनमें क्या फर्क है मेरे में और उसमें, कोई फर्क नहीं है, उसके भी दो हाथ हैं दो पांव हैं, मेरे भी दो हाथ दो पांव हैं, एक जैसा देखने में लगता है। व्यक्ति मापन मन्यते माम बुद्ध है, वो सोचते हैं कि ये तो मेरे जैसा ही व्यक्ति है, साधारण आदमी है ये तो। परम भावम अजानत, मेरा परम भाव, मैं कौन हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ब्रह्मन हूं, मैं परमात्मा हूं, अजानत है, उनको नहीं पता है, वो केवल मेरे बाहरी रूप को देख रहे हैं, मेरी शक्ति को, मैं कौन हूं ये उसको नहीं जानता। परम भाव आजानंत है, मम अव्ययम, अव्ययम मेरे में कोई व्यय नहीं है, मेरे में कोई विकार नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अनुत्तमम मेरे से ऊपर और कोई है नहीं है, मैं सर्वोपरि हूं, मैं परम हूं, ये नहीं जानते हैं। ऐसा लोग नहीं जानते हैं कि भगवान अवतार लेके आए हैं, ये भगवान है, इनके पास में सर्वस्व पावर भी है, सर्वेश्वर है ये, ऐसा लोग जो है पहचान में नहीं आता उनको, अविवेकी लोग हैं। अबुद्ध है, इनका मतलब क्या हुआ, जिनका ज्ञान सही नहीं है, वो भगवान का अवतार पहचान नहीं सके, उनका विवेक शून्य है, ईश्वर को पहचानने की शक्ति नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं हुई है, बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि उनको पकड़ सके कि ये परमात्मा है, माम मैं ईश्वर हूं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न, वे मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं, साधारण व्यक्ति समझते हैं, वो मनुष्य के भांति, अरे ये कौन है, ये तो देव की वसुदेव का पुत्र है, कौन है भाई, ये तो ग्वाला है, ऐसा सोचते हैं लोग। और मैं कहता हूं मैं अवतार हूं, मैंने विश्व रूप भी दिखा दिया, कितने लोगों को विश्व रूप दिखाया, मैंने यशोदा को विश्व रूप दिखाया, मैंने दुर्योधन को विश्व रूप दिखा दिया, मैंने अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया, फिर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं मेरे ऊपर में। अच्छा, मुझे जादूगर समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि मेरा जन्म कर्म पर निर्धारित है, हम लोग का सबका जन्म जो है कर्म पर निर्धारित है, मगर भगवान का जन्म कर्म पर निर्धारित नहीं है, उनके जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। अच्छा, भगवान अपनी माया शक्ति से शरीर लेते हैं, दुर्योधन ने क्या किया, भगवान कृष्ण को एक ग्वाला समझ कर उनको जो है जेल में डालना चाहा, देखो उनके समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। परम अनुत्तम अव्यय मम भाव अजानंत है, मैं परम हूं, सर्वोपरि हूं, अविनाशी हूं, ये नहीं जानते हैं, अव्ययम अविनाशी, ये नहीं जानते हैं, मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता है, मैं ही सुप्रीम हूं, मैं ही परम हूं, ऐसा नहीं जानते हैं। मैंने बाल लीला में सब कुछ किया, भोजन किया, स्कूल गए, सब कुछ मैंने किया, असुरों को भी मारा मैंने, सब कुछ मैंने किया, फिर भी मनुष्य मेरे को साधारण आदमी मानते हैं। मैं तो यहां पर सब कुछ देने के लिए आया हूं, देने के लिए आया हूं, मगर लोग आते नहीं हैं मेरे पास में, साधारण मानते हैं। देखो गुरुदेव जब थे ना, तब भी लोग, बहुत लोग गुरुदेव को साधारण मानते थे, आज हम सोचते हैं कि गुरुदेव क्या थे, आज उनका प्रभाव समझ में आता है कि कहाँ से वो पॉकेट में 4 आना 6 आना की 1 रुपया की 2 रुपया लेके हिमालय से जब उतरे, पहले पुणे में गए, क्या था उनके पास में, आज उनका प्रभाव देखो, उनके काम का प्रभाव देखो, उनके जाने के बाद भी वो प्रभाव कितना जोर से चल रहा है वो देखो, मगर जब वो जीवित थे तब वो प्रभाव लोगों को नजर नहीं आया, उन्हें साधारण आदमी समझते थे, साधारण साधु है। और जीव भी क्या है, बोले जीव भी जो है वो सच्चिदानंद है, मगर अपने आप को क्या कहता है, अपने शरीर से के साथ में जोड़ के वो कहता है कि भाई भाई मैं तो इस प्रांत का हूँ, इस क्षेत्र का हूँ, मैं तो ये करने वाला हूँ, मैं इस आश्रम का हूँ, मैं इस कुल का हूँ, मेरा ये है खानदान, मेरा आश्रम, दुनिया भर की चीज़ें वो करता है। किससे तादात्म्य किया, अनात्मा से तादात्म्य करके वो कह रहा है। वो है कौन, वो तो सच्चिदानंद है, मगर क्या कहता है, मैं तो ये हूं सो एंड सो, ऐसा कहता रहता है। मगर भगवान कहते हैं या वेदांत कहता है कि आप ब्राह्मण हो, आप परमात्मा हो, आप कृष्ण हो, मेरे में आप में कोई फर्क नहीं है। देखो हमारा हाल कैसा है पता है, हमारा हाल ऐसा है कि कोई एक धनी व्यक्ति का पुत्र अनाथालय के अंदर में मान लो बड़ा होता है, सोचो ऐसा है, एक बहुत धनी का पुत्र किसी कारण से अनाथालय के अंदर में वो बड़ा होता है। अब जब बड़ा होता है उसको अगर कोई कहे कि तुम तो वो धनी हो, उसको मानने में टाइम लगेगा, उसको मानने में टाइम होगा। हमारा क्या हाल है, हम भी वो ब्राह्मण हैं, वो परमात्मा है, मगर अनाथालय में पड़े हुए हैं, दुखालय में पड़े हुए हैं और अपने आप को जीव मानते हैं। और किसी तरीके से भी हम इस जीव को जो है वो ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए मना ही नहीं सकते, किसी जरूरत से नहीं। हम कहते हैं आप ब्राह्मण हो, आप परमात्मा हो, नहीं हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं, हम ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं, किसी तरीके से हम मना नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पहचानना उनका बड़ा भारी नुकसान है। क्यों नहीं पहचाना? ये तो माया का खेल है। क्यों नहीं पहचाना? माया का खेल है। अच्छा, उनके अज्ञान का कारण क्या है? इन लोगों के अज्ञान का कारण अब भगवान 25वें श्लोक में बताते हैं कि उनका अज्ञान क्यों है।
नाहं प्रकाश सर्वस्य, नाहं प्रकाश सर्वस्य, योग माया समावृतः,
योग माया समावृतः,
मूढोऽयं नाभिजानाति,
मूढोऽयं नाभिजानाति,
लोको मामजमव्ययम्,
लोको
मामजमव्ययम्, नाहं प्रकाश सर्वस्य, योग माया समावृतः, मूढोऽयं नाभिजानाति, लोको मामजमव्ययम्।
नाहं प्रकाश सर्वस्य, योग माया समावृतः। हम लोग के अज्ञान का कारण क्या है? क्यों नहीं हमको भगवान के बारे में समझ में ठीक से आता है? ना हम प्रकाश है, मैं प्रकट नहीं होता हूँ। सर्वस्य, सबके सामने नहीं होता हूँ, किसी किसी के सामने प्रकट हो जाता हूँ, किसी किसी की बुद्धि में पकड़ में आ जाता हूँ, सबके पकड़ में नहीं आता हूँ। क्यों? योग माया समावृत है, मैं योग माया से आच्छादित हूँ, ढका हुआ हूँ। एक मेरी शक्ति है, उसका नाम है योग माया। उस योग माया से मैं आच्छादित हूँ। मूढ़ अयम न अभिजानती, मूढ़म अयम न अभिजानती, मूढ़ अज्ञानी। यहाँ भी मूढ़ आ गया। शंकराचार्य जी को मूढ़ बहुत पसंद है। भगवान के कहते हैं मूढ़ अज्ञानी। अच्छा, ये कौन है? लोक है। लोक मतलब एक पर्सन, एक जनता, एक व्यक्ति। मूढ़ व्यक्ति क्या होता है? अयम न अभिजानती, मेरे को नहीं सब पहचान पाता है। कौन हूं मैं? माम अजम, आई एम अनबॉर्न। सोचो, भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, उन्होंने जन्म लिया है, अर्जुन को मालूम है, और उसको कहते हैं अजम। मैंने बर्थ ही, मेरा बर्थ ही नहीं है, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। अजम, अव्ययम, अविनाशी हूं मैं, मेरा विनाश नहीं होता है। तो एक बहुत शक्तिशाली माया जो ऐसा करती है, मैं चित स्वरूप, प्रकाश रूप, सेल्फ इफल्जेंट रूप, मगर मैं जनता के समक्ष इस रूप में नहीं आता। मैं जनता के रूप सामने सच्चिदानंद के रूप में, सटल रूप में नहीं आता। मैं कोई पकड़ नहीं पाता मेरे को। मैं अपने माया को अधीन में करके तब एक रूप लेता हूं। असल में मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं, मैं तो उत्तम पुरुष हूं। 15वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष मैं हूं, मैं साधारण पुरुष नहीं हूं। योग माया समावृत है। योग माया तीन गुण, सत्व, रजस, तमस, इसको योग कहते हैं। त्रिगुण ही माया है। कभी आप ऐसा नहीं कहना कि माया के तीन गुण हैं, वो गलत हो जाएगा। माया के तीन गुण है ऐसा नहीं कहना है, त्रिगुण ही माया है ऐसा हमको समझना है। उस योग माया से मैं छिपा हुआ हूं, मगर सबके लिए नहीं छिपा हुआ हूं, सबके लिए नहीं छिपा हुआ हूं, कुछ लोगों के लिए छिपा हुआ हूं। जो परम प्रेम से मेरे पास आते हैं, मेरी शरण में लेते हैं, मैं उन्हें माया से तार देता हूं। मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में एतम तरंती थे, मैंने आगे ही कहा है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं माया से तो आपको तार देता हूं, माया को हटा लेता हूं। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, क्या माया सच्चिदानंद को ढक सकती है? नहीं। किसको ढकती है फिर? माया हमारी बुद्धि को ढकती है। क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? नहीं, वो केवल हमारी दृष्टि को जो है वो ढक सकते हैं। शिकागो के ऊपर में बादल होंगे, आप दूसरी कहीं क्षेत्र में चले जाओ, वहां बादल नहीं है, वहां सूर्य दिखाई पड़ेगा। तो उसने क्या किया, शिकागो निवासियों के ऊपर में उन्होंने बादल डाल दिए, अब वो हमको सूर्य नजर नहीं आता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा को माया ढक नहीं सकती, माया ढकती है हमारी बुद्धि को। अच्छा, बुद्धि का ढकना क्या है? बुद्धि का ढकना क्या है? बुद्धि का ढकना ये है कि बुद्धि के अंदर हमारे जीव भाव के अंदर रजस तमस प्रधानम है। जीव जो है रजस तमस प्रधान है, तो पहले क्या होता है, तमस गुण को आवरण शक्ति कहते हैं, रजोगुण को विक्षेप शक्ति कहते हैं, सत्व गुण को ज्ञान शक्ति कहते हैं। चूंकि जीव रजस तमस प्रधान है, इसलिए उसका आवरण शक्ति ने परमात्मा को आत्मा रूप में ढक दिया है भीतर, और फिर रजोगुण ने विक्षेप कर दिया कि आप जो है कौन हो, शरीर हो आप शरीर हो। अब जिस दिन हमारा सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण कैसे बढ़ेगा, जब रजो और तमो गुण को हम जो है दबाएंगे, सत्वगुण को बाई एफर्ट प्रयास के से हम उसको बढ़ाएंगे, तब हमको ये खेल समझ में आएगा। तब हम विचार करेंगे, जब सत्वगुण बढ़ेगा तो विचार करेंगे, और हम जानते हैं विचार करने से माया नहीं ठहर सकती, माया विचार को सहन नहीं कर सकती, और वो क्या करती है, वो हमें विचार करने नहीं देगी। क्यों नहीं करने देगी? हमारे मन के अंदर राग द्वेष बैठे हुए हैं, वो सब माया का खेल है। ये राग द्वेष क्या करते हैं, ये राग द्वेष लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमको बराबर बाहर फेंक देते हैं। तो माया का काम क्या है, हमें बार बार बाहर फेंक देना है। बाहर फेंक देने का मतलब अनात्म वस्तुओं में, संसार में, जगत में फेंक देना, जगत में फेंक देते हैं बार बार। अच्छा, फिर क्या होता है, अगर हम विचार करें, विचार करें तो हमको सुख रूप है। देखो, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बहुत सही तरीके से समझ में आ जाएगा, ये एग्जाम्पल याद रखना। हम जब सोते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर के अंदर में अपने पलंग पर अपनी जैसी जैसी ज़रूरतें हैं उसको ठीक ठाक करके हम सोने चले जाते हैं। हम फुल्ली सिक्योर हैं, हमारे खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, बस बंद है। हम तो यहाँ पर अलार्म भी लगाते हैं, पता नहीं आप लोग घर में अलार्म लगाते हो कि नहीं लगाते हो। हम जो तीन घर में रहते हैं उसके अंदर हम घूम सकते हैं, तब अलार्म नहीं बजेगा, मगर दरवाजे के बाहर अगर आ गए तो टींटे टेंटे टेंटे करना शुरू कर देता है। कई बार जो है रात में 2 बजे भी हम निकलते हैं कई बार घूमने के, यहाँ एक बार चक्कर लगा के देखें, ओ भूल गए उसको बंद करना, और वो बजना शुरू कर देता है। अच्छा, वो बजना कई बार ऐसे भी शुरू कर देता है कि अगर कोई फ्लाई वगैरह भी हो ना, वो भी उड़े तो इतना सेंसिटिव है कि वो बजना शुरू कर देता है। और अभी जो है वहाँ अरुण जी, ये विवेक जी ने और श्री राम जी ने मिलकर एक कैमरा लगाया है। वो कैमरा जो है वो रस्सी है ना, रस्सी, वो रस्सी को दिखाने के लिए रस्सी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, तो उसका जो है कैमरा में वो दिया है। और वो इतना सेंसिटिव कैमरा है कि जब हवा चलती है पत्ते हिलते हैं तो वो सेंसिटिव वो बताता है, नोटिफिकेशन देता है। पहले दिन तुम पागल हो गए, हर 2 मिनट मूवमेंट, देर इज सम अनयूजुअल मूवमेंट, हम दौड़ के इधर जाते हैं, क्या मूवमेंट हुआ, कुछ भी नहीं, रस्सी वहीं लगी हुई है। फिर हमने बताया भाई ये क्या किया आप लोगों ने, बोला ये वेरी हाईली सेंसिटिव है, इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम कर देते हैं, अब वो जो है नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम हैं, फुल्ली सिक्योर, एक मच्छर नहीं घुस सकता इसमें, इतने सिक्योर्ड हैं हम, मगर रात को हम सपने देख रहे हैं। क्या सपने देख रहे हैं? एक बाघ आ गया है। हम कितने सिक्योर्ड हैं यमुनोत्र के अंदर में, स्वप्न देख रहे हैं कि बाघ आ गया है। यहाँ पर एक जो है मच्छर नहीं घुस सकता, मगर बाघ घुस गया है। घुस के क्या किया? मेरे को अशांत कर दिया। हम दौड़ रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। अच्छा, हम क्यों दुखी हुए? बिकॉज आई फॉरगॉट दैट आई एम फुल्ली सिक्योर। इज इट नॉट सो? मैं सुख स्वरूप हूं, मैं ये भूल गया हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। स्वप्न के एग्जाम्पल से आपको यह पता लगेगा कि मैं फुल्ली सिक्योर अपने घर में हूं, आराम से हूं, सुख रूप से हूं। मगर जब स्वप्न देखते हैं तब क्या होता है? मैं भूल गया कि मैं सुख स्वरूप आराम से सोया हुआ हूं और मैं दुखी हो रहा हूं। तो ये सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण जो है हमारी वासना है, और ये माया हमें बाहर ले जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं ये माया दासी है, ये नर्तकी है, सावधान हो जाओ, इस माया के फेर में पड़ो नहीं। माया के फेर में मत पड़ो, आत्मा को जानो। देखो यहाँ पर जितने भी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं ना, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, देखो हमारा वेदांत क्या कहता है कि ये सारा विश्व जो है जैसे रज्जू के ऊपर में सर्प होता है ना, वैसे ये सारा विश्व है। अधिष्ठान के अंदर जैसे रज्जू अधिष्ठान है सर्प का, सर्प है नहीं, सर्प केवल हमको भ्रम में नजर आता है, उसी तरीके से ये सारा का सारा जगत क्या है? सारा का सारा जगत जो है उस अधिष्ठान के ऊपर अध्यस्त है, अध्यस्त। तो लोग जो है सांप के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अनात्मा के ऊपर रिसर्च चल रहा है दुनिया भर का। आत्मा पर रिसर्च हो रहा है क्या? हम कहां फंसे हुए हैं? देखो सोचो कहां हम हैं। दुनिया भर का रिसर्च हम अनात्मा पर करते जा रहे हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, विग्रह देखते हैं, भगवान यही है, विग्रह को देख के कहते हैं भगवान है। मगर कभी हमने ये सुना है कि ये सोचा है कि ये अजह है, अनबॉर्न है, अव्यय, ये भिकारी नहीं है, इनका विनाश नहीं है? ऐसा हमारी बुद्धि में कभी नहीं आता है। अच्छा, मगर भक्त से छुप नहीं सकते भगवान। सत्वगुण में आप आ जाएंगे तो ब्रह्म आपसे छुपेगा नहीं। आप जैसे ही विचार करेंगे माया खत्म। भक्त जैसे ही भगवान का नाम लेगा मुक्ति, भगवान प्रकाशित हो जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। नारद भक्ति सूत्र में हम लोगों ने देखा था, संकीर्त्यमाना शीघ्रम एव आविर्भवति अनुभावयति भक्तान। संकीर्त्यमाना, संकीर्त्यमाना में जैसे ही वो कीर्तन वगैरह करता है, पूजा करता है, इनभोग करता है भगवान को, वैसे ही भगवान कहते शीघ्रम, तुरंत आविर्भवति, रिवील्स हिमसेल्फ। कैसे? अनुभावती, अब कोई बताएगा भी तो कि ये कौन है, ये भगवान है कि नहीं? भगवान खुद बताएंगे मैं भगवान हूं। किसको? भक्तान। देखो जब भगवान छोटे थे तो एक बार कहीं पर ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ वगैरह कर रहे थे, भगवान को भूख लगी है, गए बोले मेरे को थोड़ा खाने को दो। अब ब्राह्मण बोला अभी तो पूजा उजा कुछ नहीं देंगे आपको। वो चलने लगे वहां से, तो ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि तो बहुत सुंदर बालक है, अब भगवान है तो अट्रैक्ट करेंगे। और तो ब्राह्मण पत्नियों ने उठा के जो उनको दे दिया, बोले लो खाओ तुम बैठ के। भगवान तो अनंत कोटि के ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं। तो क्या छोटी सी बात, वो वहां गए मांगा, ये तो लीला है उनकी सब। वो उन नायक के भय से, भयादस्य अग्नि तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचम। उनके भय से तो अग्नि तपती है, वायु चलती है। हम लोग कहते हैं शिकागो विंडी सिटी किसके कारण है, कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहे हैं। भयात इंद्रश्च, भय के कारण जो है इंद्र वर्षा करता है, वायु चलती है, अब मृत्यु धावती पंचम, मृत्यु दौड़ रही है। किसी को इंडिया से उठाना है, किसी को अमेरिका से उठाना है, किसी को चाइना से उठाना है, दौड़ रही है मृत्यु चारों तरफ। किसके भय से कर रही है? उस परमात्मा के वैसे कर रही है, मगर अज्ञानी भगवान को देख नहीं पाता। भगवान बताते हैं जैसे माया से छिपे हुए मुझे संसार नहीं जानता, मगर माया मुझको या मेरे ज्ञान को प्रतिबंध नहीं कर सकती। माया के कारण जो है मैं छिपा हुआ है, लोग मुझे नहीं पहचान पाते, मगर ये माया मेरे ज्ञान को प्रतिबंध नहीं कर सकती। क्योंकि मैं मायापति हूं, अन्य लोग मोहित हो सकते हैं, माया से हम सब मोहित हैं, हम सब मोहित हैं। और हमको शास्त्र में बहुत बार मिलता है, सती जी भगवान शिव से कहती हैं, ये राम है इसको तुम ब्रह्म कहते हो, इसका नाम जपते रहते हो दिन रात, ये तो रो रहा है, ये अपनी पत्नी के बारे में पेड़ों से जाके पूछता है, सीता को देखा है तुमने, सीता को देखा है, भाई इसको तुम भगवान कहते हो, ब्रह्म है। देखो उनको भ्रम हो गया और वो सीता जी का रूप लेके गई उनके पास में, राम जी के पास में। और वो कहते हैं माँ तुमने ये रूप क्यों पकड़ा, क्यों लिया, ये तो लीला है, है? देखो ये माया की कितनी पावर है कि देखो बलराम को देवकी के गर्भ से उठा के रोहिणी के घर में डालना, योग माया है, योग माया है। माया के कारण जब कृष्ण का जन्म हुआ तो दरवाजे सब खुल गए और वो जो है चले गए वहां से जाके, वो फिर उठा के ले आके यहाँ आ गए, फिर जब बंद हो गया, सब योग माया है। माया अपनी योग माया से सब बहुत कुछ कर लेते हैं, अघटित घटना जो है दिखा देते हैं। और आगे हम देखेंगे आपकी क्लास में। ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।